ಮುಕುಂದ ಮಾಧವ ಕೇಶವ ಬೋ ಹರಿ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಮುಕುಂದ ಮಾಧವ ಕೇಶವ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಮುಕುಂದ ಮಾಧವ ಕೇಶವ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಮುಕುಂದ ಮಾಧವ ಕೇಶವ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಮುಕುಂದ ಮಾಧವ ಕೇಶವ ಬೋಲ್ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ 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 ಹರೆ ಹರೆ ಜಯರಾಮ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ
ಜಯ ಜಯ ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಪರಂ ಸುಬ್ರಿಬ್ಬಜರಷ್ಟು ತ್ರಿಶ ಶ್ರೀ ಶಿವದೇ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ ಜಯ ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಪರಂ ಸುಬ್ರಿಬ್ಬಜರಷ್ಟು ತ್ರಿಶ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಿ ಠಾಕುರ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ ನಮಾಚಾರ್ಯ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಕಿ ಜಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಂತ್ರರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ ಅನಂತ ಗುರು ವಿಶ್ವಮಿಂದ ಕಿ ಜಯ ನಿಜಾಯ ಗೋ ಪ್ರಮಾನಂದೇ ಹರಿ ಹರಿ ಗೋ ನಾಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಮಪಿ ಶುಚಿಪುತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪಂ ರೂಪಂ ತಿಶಗ್ರಜಂ ಮರುಪುರಿಂ ಮಾತೃಂ ಗೋಷ್ಠವಾಟಿಂ ರಾಧಾಕುಂಡ ಗಿರಿವರಮೋಹ ರಾಧಿಕಾ ಮಾಧವಾಸಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಜೈಶ್ಯ ಪಹಿತ ಕೃಪಾಂ ಶ್ರೀಗುರುಂ ತಂ ನತೋಯಸ್ಮಿ ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುವೇವ ಚ ಪವಿತಾನಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಹೀನಾ ಅಪರಾಧ ಲಕ್ಷ್ಯೈ ಕ್ಷಿಪ್ರಾಧಿಕಮಾದಿತರಂಗ ಮಧ್ಯೇ ಕೃಪಾಮಯೀ ತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನೇ ವೃಂದೇ ನಮಸ್ತೆ ಚರಣಾರವಿಂದಾಂ ವೃಂದೇ ನಮಸ್ತೆ ಚರಣಾರವಿಂದಾಂ ಆನಂದಲೀಲಾಮಯ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಹೇಮಾವದಿಬ್ಬ ಛವಿಸುಂದರಾಯ ತಸ್ಮೈ ಮಹಾಪ್ರೇಮರಸಪ್ರದಾಯ ಚೈತನ್ಯಚಂದ್ರಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಚೈತನ್ಯಚಂದ್ರಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಸಾ ಸುಖನಿವಚಿತಾ ಸದ್ಬುದ್ಧಸ್ತನ್ನಭಾವ ಅಪ್ಪಜೀತರುಚಿರಿಲಾಕೃಷ್ಟ ಸಾರಸ್ತದ್ಯಾಂ ಬ್ಯಾತನದು ಕೃಪ್ಯಾಂಗದಸ್ತತ್ತದೀಪಂ ಕುರಾನಂತಮಖಲಪ್ರಿಚಿಂಗ್ನಾಂ ಅಭಸಸೋನು ನತೋ ಯಸ್ಮಿ ಭವೇ ಭವ ಯಥಾ ಭಕ್ತಿ ಪಾದಸ್ತವ ಜಾಯತೆ ತಥಾ ಕುರುಸುದೇವಶ ನಾಥ ಸ್ತನಜತ ಪ್ರಭೋ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಜೈಶ ಸರ್ವಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶನಂ ಪ್ರಣಾಮಂ ದುಃಖ ಸಮನಸ್ತು ತಂ ನಮಾಮಿ ಹರಿ ಪರಂ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತಾಂ ನರಾಂಚೈವ ನರೋತ್ತಮಾಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸ ತತೋ ಜಾಯ ಮುದೀರಯೇತ್ ನಷ್ಟ ಪ್ರೇಷ ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾಂ ಭಾಗವತೇ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನಾಷ್ಟಕೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ನಮಸ್ಮಧ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 13 ಜಸ್ಯಂ ಇರಿತಾಂ ಸಾಂಖ್ಯಮಯೀಂ ದೀಢಾಂ ಇಹ ನೋ ಜಯಾಂ ಮುಮುಕ್ಷು ತರತೆ ದುರತ್ಯಂ ಭವ ಅರ್ಣವಂ मृत्युपथं विपश्चितः परात्मभूतस्य पथं पृथग्मति। जैसे ऋतसंकमयी दिलहेर्नोर जया मुमुक्षास्तरते दुरात्तयाम् भवार्णवं मृत्यु पथं विपश्चितं परात्मभूतस्य कथं पृथङ्गते। जैसे ऋतसंकमयी दिलहेर्नोर जया मुमुक्षास्तरते दुरात्तयाम् भवार्णवं मृत्यु पथं विपश्चितः परात्मभूतस्य कथं पृथङ्गमति। जैसे ऋतसंकमयी दिलहेर्नोर जया मुमुक्षुस्तरते दुरात्तयाम् भवार्णवं मृत्यु पथं विपश्चितः परात्मभूतस्य कथं पृथङ्गमति। जैस्याम जिसके द्वारा इरिता बतलाया गया सांख्यमयी सांख्य दर्शन के रूप में दीढ़ा अत्यंत प्रबल यह इस जगत में नो नाउ जया जिससे मुमुक्षु मोक्ष का कामना करने वाला व्यक्ति तरते पार कर सकता है दुरत्यम दुर्लंघ भव अर्णवम अज्ञान के समुद्र को मृत्यु पथम बारंबार जन्म मृत्यु का चक्र विपस्थित विद्वान पुरुष का परात्म भूतस्य दिव्य पद को प्राप्त कथम कैसे पृथक मते भेदभाव अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा कपिल मुनि ने इस जगत में सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया जो अज्ञान रूपी सागर को पार करने के लिए दृढ़ नाव है। निस्संदेह भवसागर को पार करने के इच्छुक व्यक्ति को इस दर्शन का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ऐसे महापुरुष ने जो आध्यात्म के उच्च पद को प्राप्त हो चुके हैं उन्हें मित्र तथा शत्रु में कैसे अंतर हो सकता है। तात्पर्य जो दिव्य पद को प्राप्त होता है वो सदैव प्रसन्न रहता है। वह इस संसार में अच्छे तथा बुरे मिथ्या का अंतर से अप्रभावित रहते हैं। अतएव ऐसा महान पुरुष सम सर्वेशु भूतेषु होता है। क्योंकि वह भौतिक कलमश से रहित परम पद पर होता है इसलिए वह परात्म भूत ब्रह्मभूत कहलाता है। इसलिए कपिल मुनि महाराज सगर के पुत्रों पर तनिक भी क्रुद्ध नहीं हुए थे। प्रत्युत वह सभी अपने शरीर के ताप से भस्मसात हो गए थे। सुखदेव गोस्वामी बाह्यिक दृष्टि संपन्न व्यक्ति को ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मत होता है। कई के कहते हैं ये महद व्यतिक्रम के द्वारा उन्होंने उनको दृष्टि से उसको भस्मभूत कर दिया। अगर के इस प्रकार कहे इसलिए श्लोक दिया गया है, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। सम सर्वेषु भूतेषु जब तक नहीं होता है तब तक भक्ति लाभ नहीं होता है, क्योंकि श्लोक में ऐसे कहते हैं सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। जब व्यक्ति सर्वभूत में समदृष्टि संपन्न होता है तो भी वो मेरा भक्ति लाभ करता है। अरे समदृष्टि कब होगा? ब्रह्मभूत अवस्था जब प्राप्त करेगा। ब्रह्मभूत अवस्था क्या है? न शोचति न कांक्षति, यही ब्रह्मभूत है। वो कुछ सोचता भी नहीं है और कुछ आकांक्षा नहीं करते हैं। दुखेशु उद्विग्न वना सुखेशु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थितधीर मुनि रुच्यते, ये स्थितधि है। इस प्रकार जब तक नहीं हुआ जाता है तब तक भक्ति लाभ नहीं होता है। भक्ति लाभ करना और भक्ति करना दोनों अंतर है, ख्याल रखना चाहिए। भक्ति लाभ करना और भक्ति करना दोनों अंतर है। भक्ति सब कोई कर सकते हैं, नहीं भक्ति लाभ सब कोई नहीं कर सकते हैं। भक्ति लाभ करने के लिए उस प्रकार दृढ़ता पूर्वक साधन करना चाहिए तो भी भक्ति लाभ करेंगे। तो ऐसे जब साधन करेंगे हम तो हम ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करेंगे। तो ब्रह्मभूत अवस्था में किसी की आकांक्षा नहीं है, कोई सोचना नहीं, कुछ भी नहीं, राग नहीं, देश नहीं, दुख नहीं, सुख नहीं, शीत नहीं, ग्रीष्म नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसे होने से वो सब जीव में समभाव होगा। समभाव कैसे? उसको किसी से कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं है, तो स्वाभाविक समभाव हो जाएगा। जब समभाव होगा इस प्रकार दृष्टि संपन्न व्यक्ति मेरा भक्ति लाभ कर सकता है। मधुभक्ति लभते पराम, एक आ गया है। तो ऐसे महान पुरुष जिससे कुछ लेना देना नहीं है वो कैसे किसी पर क्रोध कर सकता है? कि सगर का पुत्र लोग सब भस्मीभूत हो गया और भस्मीभूत होने के बाद लोग कहेंगे रे यही मुनि है, ऋषि है, महात्मा है, भगवान का सत्यावश अवतार है, सबको भस्म कर दिया। यही पॉइंट दिया गया, नहीं इन्होंने नहीं किया, उन्होंने महद व्यतिक्रम, महद का जो अतिक्रम किया ना, इसके वजह से उनका ये हाल हुआ। जैसे हम लोग शिष्य अगर पढ़ेंगे शिष्य में, जब वो काजी ने हरिदास ठाकुर को 22 बाजारे मारने का आज्ञा दिया, हरिदास ठाकुर कुछ नहीं कहा, मार खा लेकिन कुछ भी नहीं कहा। सुदर्शन आया तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, ऐसे जीवेरे कृष्ण करह प्रसाद, मोर दहे नहु के सवार अपराध। हे कृष्ण, कृष्ण ने सुदर्शन भेज रहे हैं, जाओ जितना जवन है ना सबको काट के आ जाओ, पृथ्वी को जवन शून्य कर दो, एक भी मुसलमान इस धरातल पर नहीं रहना चाहिए। सुदर्शन को भेज दिया, हरिदास ठाकुर देख रहे सुदर्शन आ रहे सबको काटने के लिए, हरिदास को क्या बोला, ये सब जीवेरे कृष्ण करह प्रसाद दिया। सुदर्शन ही रुक गया, सुदर्शन ही पर रुक गया, मोर द्रहे नेहू को सवार अपराध। ये बुद्धू है, कुछ जानते नहीं है, अगर ये जानता था तो मेरा ऊपर द्रोह नहीं करता था, ये मूर्ख है, ये मूर्ख होने के वजह से मेरा ऊपर द्रोह कर रहा है, इसलिए कृपा करके इस पर प्रसाद कृपा कीजिए, इसको बाद मत कीजिए। भक्तों का वाक्य भगवान लंघन नहीं कर पाया, उन्होंने सुदर्शन को रोक दिया, और हरिदास ठाकुर को जितना पिटाई हुआ उतना पिटाई भगवान अपना पीठ पर ले लिया। जय श्री श्री गुरु गौरांग बंधारी जगन्नाथ बलभद्र सुखदेव। हरिदास ठाकुर को जितना व्यत्राघात हुआ, हरिदास ठाकुर को पीठ पे एक भी नहीं, सब भगवान कृष्ण का पीठ पे आ गया। और जब सात पहरिया भाव हुआ था तो हरिदास ठाकुर को देखा, देखो हरिदास तुम्हारा वाक्य में लंघन नहीं कर पाया, तुमको जो जवन लोग मारा वो मेरा पीठ में अभी तक निशान लगा हुआ है। तो हरिदास ठाकुर देख रहे भगवान पीठ में चाबुक का निशान लगा हुआ है। ते भक्त वत्सल भगवान होते हैं, जो व्यक्ति उनका भजन करते हैं उसका किसी प्रकार कोई भय नहीं रह सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता उसका। उसका ऊपर जो देश करेगा, वो अगर देश नहीं भी करेगा तो भी उसका सत्यानाश हो जाएगा। जैसे उनका हुआ, सब बाकी जितना लोग सो मारा था ना हरिदास ठाकुर को, सबका सत्यानाश हो गया, एक भी जीवित तो नहीं रहा, सब मर गया। ये महद अतिक्रम, हरिदास को किसी को नहीं मारा, लेकिन महद व्यक्ति का अतिक्रम करने के वजह से वो सबको मृत्यु हो गया। तभी हरिदास ठाकुर जब कारागार में जा रहे थे, उनको कारागार में डाला गया, तो कारागार में जितना कैदी था वो लोग क्या सोचा, जब ही हरिदास ठाकुर के दर्शन हो गए हम लोग को मुक्ति हो जाएंगे हम लोग, क्योंकि वैष्णव दर्शन पवित्र करो यही तो वो गुण, ये वैष्णव का गुण है दर्शन से पवित्र करो। तो यहाँ कपिल मुनि को दर्शन से इनको पवित्र हो जाना चाहिए, कि दर्शन से पवित्र, किन्तु दृष्टि अलग हो गया। इनका दर्शन क्या हो गया, इनका दर्शन हो गया चोर है। तो ये कपिल मुनि को दर्शन किस भाव से किया, चोर भाव से किया। ये चोर भाव से करने के बजाय से इनका क्या हुआ, सत्यानाश हो गया। साधारण भाव से भी अगर देखते थे इतना गिया गुजरा काम नहीं होता था, लेकिन चोर भाव से दर्शन करने के वजह से जो जो व्यक्ति नहीं है उसको वो बोलना सबसे बड़ा अपराध होता है। आप अगर चोर नहीं हो, अगर आपको आप सब चोर है तो क्या होता है, अपराध होता है। चोर को चोर बोलना पाप नहीं है, लेकिन जो चोर नहीं उसको चोर बोलना अपराध होता है। अपराध कहा जाए किसी, अगर वो वैष्णव है तो, अगर साधारण व्यक्ति है तो पाप होगा। साधारण व्यक्ति को अगर चोर नहीं उसको चोर कहा जाएगा तो पाप होगा, लेकिन वैष्णव अगर चोर नहीं उसको चोर कहा जाए उसको अपराध होगा। ये डिफरेंस है। तो यहां मुनि हैं, इन्होंने वास्तव में क्या करेगा, फिर भी इनको चोर दृष्टि में दर्शन किया, इसलिए इनका ये हाल हो गया, अपराध हो गया, महद अतिक्रम हो गया, जिसकी वजह से शरीर का तपाग्नि के द्वारा वो भस्मीभूत हो गया। हम लोग को ऐसे डॉक्टर में ऐसे क्या बोलते हैं, 104.5 अगर डिग्री बुखार हो जाए तो व्यक्ति मरने जिंदा रहने वाला नहीं है, वो मर जाएगा, स्वाभाविक है। इतना ताप बढ़ गया तो यही है, वहां पर ताप थोड़ा ज्यादा हो गया तो इसलिए भस्म हो गया, यहाँ ताप कम इसलिए बेहोश होकर मर जाएगा। इस प्रकार देखा जाता है ये महद का अतिक्रम करने का फल क्या होता है। कभी भी किसी भी प्रकार से महद का अतिक्रम नहीं करना चाहिए। हरिदास ठाकुर जब उस कारागार में पहुंचा तो कारागार का जितना सारे कैदी था सब हरिदास ठाकुर को दर्शन करने आ गया, बोला अभी हमारा मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि महद व्यक्ति को हम लोग दर्शन कर रहे हैं, हमारा मुक्त वैष्णव भी है। तो हरिदास को आशीर्वाद दिया, क्या आशीर्वाद दिया, जैसे रहे वैसा ही रहो। अभी लोग तो समझ नहीं पाया क्या आशीर्वाद, बोला हम लोग कारागार में हैं तो हम लोग कारागार में दर्शन वाद, कारागार में रहने के लिए हरिदास ठाकुर ने आशीर्वाद दे दे, कैसे हो सकता है। हरिदास ठाकुर सर्वभूत का अंतर्यामी है, जिस पर भगवान सर्वभूत का अंतर्यामी होते हैं ना, एक महाभागवती उस प्रकार सर्वभूत का अंतर्यामी है। उन्हें समझ गया, ये लोग प्रश्न, उन्होंने कहा मैंने आप लोग के मंदिर में भी आशीर्वाद नहीं दिया, मैंने आशीर्वाद आप लोग क्या दिया, आप लोग अभी जितना श्रद्धा से वैष्णव को दर्शन कर रहे हो ये श्रद्धा आप में बना रहे। बोला हमको भी किसी का कोई भी जीव का अशुभ चाहते ही नहीं है, तो आपका अशुभ हम क्यों चाहेंगे, हम किसी जीव का नहीं चाहता, आपका अशुभ आप लोग हमें श्रद्धापूर्वक आया ना, ये चलो आज महाभागवत को दर्शन होगा हमारा दुर्भाग्य काट जाएगा, ये श्रद्धा का साधु लोग महाभागवत को दर्शन करने आया। तो हरिदास का बोला ऐसा ही भाव आप सब में बना रहे, मैं ये आशीर्वाद दिया। वास्तव में कुछ दिनों के बाद सबको मुक्ति हो गया और सब घर में जाकर हरिभजन करने लगा। ये महत व्यक्ति का दर्शन का फल होता है, यही महत यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे इन्होंने कहते हैं ये मुनि सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया। सांख्य दर्शन क्या है, आत्म अनात्म का विवेक, जिसे पंच महाभूत पंच तन्मात्र पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन बुद्धि अहंकार चित्त 24 सत्तरजतम 27 जीवात्मा परमात्मा 29 इस तत्व का विश्लेषण करना सांख्य दर्शन है। तो जड़ों में कितना आ जाता है 24 तत्व पूरा जड़ है और इस जड़ों का विक्रिया तीन गुण है। जड़ वस्तु अगर नहीं तो गुण नहीं, गुण नहीं आएगा, अगर आग रहेगा ताप आएगा, आग नहीं तो ताप कहां से आएगा। तो जड़ वस्तु है बल्कि तीन गुणों का संपर्क है, अगर जड़ वस्तु नहीं है तो तीन गुण का भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए ये 24 तत्व को मैन माना गया है और ये तीन तत्व जो है सत्व रज तम ये 24 का क्रिया है, लेकिन 27 तत्व होने के बावजूद भी जगत कार्यकारी नहीं होगा। जगत को कार्यकारी करने के लिए जीवात्मा और परमात्मा का आवश्यक है। तो जब किसी व्यक्ति ने इस प्रकार विश्लेषण जगत का विश्लेषण करके जाएगा तो कहां पर टिकेगा, जीव और परमात्मा दोनों वस्तु में टिक जाएगा। जो ये देखा कि 27 तो फालतू है, जीव जब परमात्मा का भजन करेगा तो इसको उद्धार हो सकता है, ये सांख्य दर्शन है। इतना बड़ा दर्शन को दो लाइन में फिनिश हो गया, इसको बोलते हैं सांख्य दर्शन। ये सांख्य दर्शन को जो जानते हैं वो हरिभजन में तत्पर हो जाते, भाई फालतू ये सब देह क्या है, ये संसार क्या है, ये बोलते ना प्रभु को जीव कथमिद मचित विश्व मिथिव्या विचार जे तानो तानो हरिभजन किच्छास्त चतुर अभेदासं धर्मान सकल अपराधान परिहरन हरेर नामानंदे पिबती हरिदास हरिजन। लास्ट श्लोक प्रभु को जीव, जीव क्या है, कथम इदम विश्व, ये विश्व क्या वस्तु है, ये तीनों तत्व को विचार करके विचारवान व्यक्ति क्या करेगा, हरि भजन किच्छास्त चतुर, वो हरि भजन करेगा, दूसरा कुछ नहीं करेगा। जो तीनों तत्व को विचार करे लगा तो विचार करके हरि जन ही, और हरि भजन कैसे करे, हरि जन ही हरि भक्त का साथ में हरि भजन करेगा, बाकी जो थोड़ा इधर उधर टांग खींचने का कोई आवश्यक नहीं है। हम कितना भी किसी को टांग खींचा हमारा कुछ होने वाला नहीं है, हम ही नीचे जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, चुपचाप हरिभजन करेगा, वो जानते हैं दुनिया तो यही है, एकमात्र प्रभु कृष्ण है, संसार ये है और जीव का साथ संसार के संबंध है, संसार का जीव के संबंध है, जीव के साथ भगवान के संबंध है, भगवान के साथ संसार के संबंध है, ये छह जो संपर्क है, ये छह संपर्क में परिज्ञात होने के बाद वो क्या करेगा, चुपचाप माला लगा हरे कृष्ण करते रहेगा, कुछ नहीं करेगा। जिस दिन जिस व्यक्ति के जो खाने के लिए मिला हुआ ना कोई रोक नहीं, हम लोग अगला हफ्ता हम लोग को खिचड़ी खिलाया था तो हम लोग सब गर्म हो गया था, सब गर्म हो गया, सब भक्त गर्म हो गए, यार खिचड़ी खिला दे, खिचड़ी खिला दे, क्या कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कुकिंग करता है, ऐसा कुकिंग करता है, भाई हमारा नशे में खिचड़ी तो गोसा हो गया, क्या करोगे, नशे में है कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए नसीब को साथ देकर हमें समझना चाहिए, जो मिलता है उसमें संतोष होकर खा लेना चाहिए, जो मिला वही से ही, ऐसा संतोष होगा तभी भजन भक्ति लाभ होगा। सम सर्वेशु भूतेषु, जब हम अच्छा बुरा देखेंगे, भालना खाइबे को भालना परिवे हृदय ते राधाकृष्ण सर्वदा चिंतीबे, ये महाप्रभु उपदेश है रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर। अच्छा खाना नहीं चाहिए, अच्छा पहनना नहीं चाहिए, सदा सर्वदा राधाकृष्ण का चिंता करो, खाना पीना अपना आप आ जाएगा, इसके लिए टेंशन लेने का जरूरी नहीं है। जिस दिन जी मिलेगा उस दिन, जिस दिन आपको नसीब में जो लिखा हुआ वो आप ना चाहते हुए मिल जाएगा, आज जिस दिन लिखा हुआ नहीं है वो होते हुए आपको खा नहीं सकते हो। इस प्रकार मनोभाव महाभागवत का होता है, हमारा नहीं होगा, हम साधक भक्त है। तो महाभागवत किस प्रकार मनोभाव होता है और महाभागवत किस प्रकार जो मनोभाव होता है, यही मनोभाव का वजह से वो किसी से भी देश नहीं कर सकता है। इसलिए कहा गया है कपिल देव ऐसा कैसे साधारण व्यक्ति, ये जो सागर का पुत्र 60,000 कैसे हो सकता है? नहीं, इन्होंने इस प्रकार काम नहीं किया, ये अपना पाप से अपना मर गया। गौरकिशोर दास जी महाराज नवद्वीप में अपना भजन कर रहे हैं, जब उन्होंने भजन कर रहे थे उसमें ब्राह्मण कुलो भूत व्यक्ति आए, आके गौरकिशोर दास जी महाराज के क्या कहा, मैं ब्राह्मण हूं, आप जानते हो मैं ब्राह्मण हूं? मैं, हाँ बाबा आप ब्राह्मण है, मेरा चरण दो तो पानी आपको पीना चाहिए, आपको ये ख्याल नहीं है? नहीं, हम जरूर पियेंगे, आप दीजिए ना। तो उन्होंने बर्तन लाया, बर्तन में ब्राह्मण ने चरण धोआ, गौरकिशोर दास जी बाबा जी महाराज पानी को पी गया, उस ब्राह्मण का 2 दिन में सत्यानाश हो गया। मौत अतिक्रम नहीं करना चाहिए कोई भी, वैष्णव ब्राह्मण से वैष्णव श्रेष्ठ जानते ना, अरे तो महावैष्णव महाभागवत है, दास गोस्वामी के बाद दूसरा नंबर में इनका नाम है गौरकिशोर दास महाराज का, रघुनाथ दास का बाद यही एक व्यक्ति है जितना कठोर वैराग्य दिखाया, दूसरा कोई नहीं दिखाया। उनको इस पर हम ब्राह्मण है करके अवमानना किया, सत्यानाश हो गया। एक बी एंट्रांस, उस समय एंट्रेंस पास किए थे, एंट्रेंस बोलते उसको, वो आया बाबा जी का दर्शन करने के लिए, पहले भक्ति सिद्धांत सट्टा गुरु पास आए, फिर उनको पूछा आपका गुरु कौन है? ना हमारा गुरु वो है, कहाँ रहते ना कुलिया, बोलता है अगर आप ऐसे तो आपका गुरु कितना पावरफुल होगा, तो आपसे दीक्षा नहीं लेंगे, आपका गुरु से जाकर दीक्षा लूंगा। वो सीधा कुलिया में गया, कुलिया में जाकर के उनको प्रणाम किया, तो उन्होंने बाबा जी अपना कभी कपड़ा पहनते थे कभी नहीं पहनते थे, वो देख के क्या किया, वो भी यहीं तो कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, बोला हम भी बाबा जी जैसे ही बनेंगे। तो बाबा जी ने बाथरूम में भजन करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी बाजू का एक बाथरूम ले लिया, तो बाबा जी एक बाथरूम में भजन कर रहे हैं, वो भी एक बाथरूम में भजन कर रहे हैं दोनों। बाबा जी महाराज रात को उठ के देखते हैं एक घर में कोई है कि नहीं है, तो घर खुल के देखता है अंदर कोई नहीं है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वां दिन उसको पकड़ा, बोला बाबा, बाबा जी बेस लग करके रात को दूसरा स्त्री का साथ सोना अच्छा नहीं है, सीधा डायरेक्ट खंडेर मेरे मिल दिया नॉन स्टॉप, अनुकरण मत करो, इससे घर में जाके शादी करो, जाओ शादी करके हरिभजन करो, आपका कल्याण हो जाएगा। इतना पोस्टवानी कौन बोलेगा? कोई नहीं बोल पाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा पोस्ट बोल दिया, बोला आप हमारे साथ अनुकरण करके हमारे जैसे प्रतिष्ठा ऐसा प्रतिष्ठा लोलुप होकर के आप रात को जाके दूसरा स्त्री के साथ सोते हो और ऐसा लोग को देखा था भजन कर रहे हैं, ये करने के बजाय आप घर जाओ, घर में जाकर शादी करो, शादी करके आप हरि भजन करो, आपको उद्धार हो जाएगा। बाबा जी से पकड़ा गया, वो तुरंत भागा, भाग के जाके एक दारू का दुकान में नौकरी किया, महत अपमानना का फल देखो, दारू का दुकान में नौकरी शुरू कर दिया, और एक शादी तो किया, आज शादी करने के बाद उसको क्या पहनाया, साड़ी नहीं, उसका आटा आता है ना ब्लाउज पीस जो अभी क्या फैशन है, वो पहना के उनका साथ में रहने लगा। ये महत अतिक्रम का इतना फल होता है, ये हमारा गौरकिशोर दास जी महाराज है, इन्होंने वैराग्य का पराकाष्ठा दिखा दिया। तो कभी भी महत का अतिक्रम हमें नहीं करना चाहिए, कोई भी जीव अगर एक दिन भी हरिभजन करता ना, उसको भी अवमानना करना क्या हमारे अधिकार में नहीं है। सब जीव में हमें क्या सोचना पड़ेगा, भगवान का मंदिर है, चलता फिरता मंदिर है भगवान का, लेकिन एक साधारण व्यक्ति का हम उस प्रकार सम्मान नहीं देना चाहिए, ये भी ख्याल रखो। ईश्वर जी भाई सब जीव का मई भाव, ये भाव महाभगवतम है नहीं, हम शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्र सुनते हैं और उसी प्रकार हम आचरण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश से काम नहीं होगा, स्वभाव सिद्ध होना चाहिए, स्वभाव सिद्ध होना चाहिए, सब में समभाव होना चाहिए। जिसे कैसे वैष्णदेव ने जो वो सुखदेव के पीछे भाग रहे थे, तो लड़की लोग सुखदेव को देख के कपड़ा नहीं पीना, वैष्णदेव को देख के पीन लिया, तो लड़की का भाव क्या था, अब इसमें दूसरा विचार करेंगे, उस दिन दूसरा विचार किया था, आज दूसरा विचार करेंगे, लड़की का क्या भाव था, लड़की का भाव था जो सुखदेव गोस्वामी जो है इसका भेद दृष्टि नहीं है, सुखदेव का साथ अगर हम नांगा भी रहे हमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि समभाव समदृष्टि है, स्त्री पुरुष भेद इसमें नहीं है। लेकिन वैष्णव में भेद लड़की लोक में ये जान गया, ये वैष्णव है, एक गृहस्थ है, सब कुछ जानते हैं, इसका सामने हमें इस प्रकार नहीं रहना चाहिए। तो लेकिन लड़की लोग भी समभाव नहीं है, इन्होंने दोनों प्रकार भेद दृष्टि किया, उसी प्रकार हमें भी इस प्रकार भेद दृष्टि करना पड़ेगा। जो भक्त है उनको भक्त भाव में उसको आदर अर्पण करना चाहिए, जो कर्मी है उसको कर्मी भाव में उसको आदर अर्पण करना चाहिए, ये दोनों। आए भक्त में तरतमता है, वैष्णव वैष्णव प्राय वैष्णव आभास, वैष्णव प्राय को वैष्णव समझ में नहीं करना चाहिए और वैष्णव आभास को वैष्णव बोल के सम्मान नहीं करना चाहिए। जे जिस प्रकार है उसको उसी प्रकार का सम्मान करना चाहिए। वैष्णव को वैष्णव उचित तो सम्मान करो। वैष्णव कौन है? जो श्रद्धापूर्वक अपराध रहित होकर के हरिनाम लेते वो वैष्णव है। आज जिसका श्रद्धा नहीं है वो वैष्णव प्राय है। और जो देखा हम भी तिलक कर रहे हैं, आप भी तिलक कर रहे हैं, हम भी माला है, आप भी माला लेके मंदिर आया, वो वैष्णव प्राय है। नहीं, वैष्णव आभास है, वैष्णव प्राय हो जाता है जो अपना उल्टा हो गया था बोलना। वैष्णव प्राय वो है जो श्रद्धा नहीं है लेकिन हरिनाम, मतलब क्या बोलते हैं, हरिनाम कर रहे हैं, वो वैष्णव प्राय है। और आभास, आभास मीन्स हम भी कर रहे हैं, आप भी हमारा देखा देखिए, आप भी गला में माला लिया, तिलक कर दिया, सांडे आएगा खींच लिखा के चला गया, इसको बोलते हैं आभास। ये आभास भी महाफलदायक होता है, ऐसा नहीं कर सकते उसको आभास देख के हम घृणा नहीं करना चाहिए। वो आभास भी एक दिन प्राय में आ जाएगा, वो देखा देखी करके बोले अभी ये लोग भी तिलक कर रहे, ये भी कर रहे, अभी प्रसाद मिला तो हमको भी मिला, चलो हम भी वैष्णव बन जाए। वो दो चार दिन प्रसाद खाते खाते वो भी हमारे देश से करना शुरू कर दे। इसलिए वैष्णव आभास को भी घृणा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको वैष्णव उचित तो सम्मान नहीं करना चाहिए और उसको उसका साथ वैष्णव उचित तो व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसके लिए मध्यम अधिकार की जो है वो भाव रखना चाहिए, क्या? प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, जो करोति स मध्यम, ईश्वर में प्रेम तद अधीनेशु मैत्री, तद अधीन मत ईश्वर का अधीन कौन है? भक्त है, उनका साथ मैत्री रखो। और बालिश जो कुछ नहीं जानता है उनको कृपा करो। आज जो देशी व्यक्ति है ना उसका छाया का भी मारा मत, उस छाया की परेशानी करना चाहिए जो देशी व्यक्ति है। इस प्रकार अगर हम विचार परायण होंगे तो हम मध्यम अधिकारी बन सकते हैं, और इस प्रकार विचार परायण हम नहीं होते तो हम मध्यम अधिकारी कभी नहीं बन सकते हैं, हम कनिष्ठ अधिकारी में रह जाएंगे। आधे दिन कनिष्ठ अधिकारी से नीचे आ जाए कौन बन जाएंगे, ये शास्त्र का तात्पर्य है। एवं जो शास्त्र तात्पर्य देते हैं ये क्या कहते हैं, हम लोग अभी क्या सुना, इसका बेटा हुआ, उसका बेटा हुआ, उसका बेटा हुआ, उसका बेटा हुआ, उसका शादी हुआ, उसका बेटा हुआ, यही सुन के आ रहा है ना, इसमें क्या मिलने वाला है? इसे मिलने वाले भगवान का क्या कथा है? कुछ भी कथा नहीं है। नहीं, भागवत क्या था? कहते हैं जैसे श्रूय माना है कृष्ण परम पुरुष है भक्ति उत्पत्ति पंश शोको मोह भाव है। आप इसको सुनो, ये भागवत है। जैसे श्रूय माना है वैष्णव ने पहले कहा पहला कंठ में, ये जो शादी फादी का चक्कर चल रहा है, ये इसका बेटा, इसका बेटा, इसका ये हुआ, ये चक्कर चल रहा है, इसको भी आप सुनो क्योंकि भागवत का अंदर है। इसको कोई और श्रद्धा बोले इसमें क्या होने वाला, ये तो ऐसा है, अश्रद्धा सही अगर जाओगे ना तो भागवत चरण अपराध हो जाएगा। क्या लिखा है, इसका पत्नी हुआ, उसके पत्नी हुआ, उसके पत्नी हुआ, उसके बच्चा हुआ, इसके हुआ, बाकी कुछ है नहीं, इसको पढ़ने का जरूरी नहीं, इसको चैप्टर माइनस नहीं। ये भी जैसे भी श्रो महाराण कृष्ण, ये भी कृष्ण का कथा है, ये भी भागवत के अंदर स्थान लाभ किया है, इसलिए इसको भी उसी प्रकार श्रद्धापूर्वक हमें श्रवण करना चाहिए। इसलिए कहते हैं जैसे भी श्रो महाराण कृष्ण परम पुरुष है भक्ति उत्पद्य दे पुंसो शोको मोह भया गया। ये भक्ति उत्पन्न होगा, शोक मोह भय ना सुनी भक्ति का उत्पन्न होगा, क्योंकि ये पढ़ने से या सुनने से इसको भी हमें ताच्छिल्य नहीं करना चाहिए। इसमें हमको क्या मिला, अभी इतना जो श्लोक है एक से लेकर के कहां तक, 14 नंबर श्लोक, 15 श्लोक यहां एक से लेकर के अपना 11 नंबर श्लोक तो वही मिला, 17 नंबर 12 नंबर श्लोक में देखते हैं महद अतिक्रम। इतना सो होने के बाद बोलता है ये सिक्का क्या मिला, जो अगर इतना बड़ा व्यक्ति होने के बावजूद भी अगर महद का अतिक्रम करता है तो वो भी भस्मीभूत हो जाएगा। सुलोपानी समझ यदि वैष्णव निंदा करे, सुलोपानी समझ, सुलोपानी शब्द अर्थ है शिवजी, शिवजी का समान भी व्यक्ति अगर वैष्णव निंदा करता है उसका भी अधपतन होता है। महद अतिक्रम का ये दुराग्रह फल है। महद को अतिक्रम कभी भी नहीं करना चाहिए। महद सेवा दार विमुक्ता हो तुमो दारो जोशीति संगी संगरनाम। महद सेवा का संसार से मुक्त होने का दार है और संसार का बंधन का दार क्या है? जोशीत संग जो करता है तुम उदार नरक का द्वार है। ये महत दो प्रकार का है, एक सविशेषवादी एक निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी महत है, उनका भी संग किया जाए तो मुक्त हो सकते हैं। सविशेषवादी का सेवा करेंगे तो मुक्त होने के बाद भक्ति लाभ कर सकते हैं, ये डिफरेंस है। निर्विशेषवादी खराब व्यक्ति नहीं है, उसको मायावादी नहीं बोल सकते हैं। मायावादी या निर्विशेषवादी में अंतर है। मायावादी कुछ मानते ही नहीं है, निर्विशेषवादी भगवान को निराकार मानते हैं, इतना डिफरेंस। भगवान को मानते हैं, उनको आकार को नहीं मानते हैं, वो भी निराकार है, निर्विशेषवादी है। लेकिन भगवान का सत्यता का स्थापन करते हैं, मानते हैं वो। मायावादी भगवान को नहीं मानता, भक्तों को नहीं मानता है, भगवान का धाम को नहीं मानता है, विग्रह का नाम किसी को भी नहीं मानता है, इसलिए मायावादी है। ये महोत्सव इनका को दर्शन परसों और संभाषण भी हो जाए तो भी मुक्त हो जाए। जैसे नारद जी का चरित्र, उनको देख करके वेद महाभागवत बन जाता है। दो चार बात करते हैं, ज्यादा कुछ बोलते नहीं है। धोनु भागो जाके भजन करो, बस इतना उपदेश में ही वो महाभागवत बन गया। चीटू को भी हिंसा नहीं किया। ये महाभागवत का पावर होता है। उन्होंने जिस किसी को भी हरि भजन में लगा सकते हैं। रूपवाद पाश्चात्य इसमें किया ना, क्या था सब? अर्धनग्न, पूरा नग्न, आधा पागल, पूरा पागल, सब था ऐसा ही। बोला हरि भजन करना है, ठीक है, लग गया, उसी बेस में लग गया, जो जैसे था वैसे कीर्तन करने लग गया। रूपवाद का कीर्तन पार है, शुद्ध भक्त हरिनाम उच्चारण कर रहे हैं। वो श्रवण किया, लेकिन उनमें वो जो व्यक्ति था प्रभुपाद में अश्रद्धा नहीं था। प्रभुपाद जी को अश्रद्धा नहीं करते थे, वो लोग को भी भले ही पहले बोले श्रद्धा नहीं था, लेकिन अश्रद्धा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उनका श्रद्धा उसमें आया और श्रद्धा मजबूत हो गया और आश में जाके सब भक्त बन गया। ये महोत्सव का फल है। किसी प्रकार से महत्व का सेवा किया जाए, किसी प्रकार से भी वाक्यों के द्वारा, शरीर के द्वारा, अर्थ के द्वारा, कैसे भी करके अगर महत्व का सेवा किया जाता है तो क्या बोलता है, ये संसार का जो बड़ा विपद है ना, उस भी टल जाएगा। इसलिए कहते हैं महत्सवा धारो विमुक्त आहो। भगवान शिवदेव कहते हैं ये महत्व का सेवा इस संसार से मुक्त होने का दार स्वरूप है। यही महत अतिक्रम आज ये सगर राजा का वंश लोग कर लिया। कैसे? ऐश्वर्य मद में मत होकर के। हमारे जैसे बलवान कोई नहीं है, 60,000 पुत्र ने कोदाल को चला करके एक सागर बना दिया। ये सांख्य दर्शन है। उन्होंने सांख्य दर्शन का निर्माण करके इसे, ये सांख्य प्रणेता, इसको आत्मा और अनात्मा का भेद जो है जानते हैं, नहीं तो सांख्य दर्शन प्रणयन कैसे करेगा? ये व्यक्ति ऐसे कैसे इनका पर उल्टा प्रभाव कर सकते, नहीं कर सकते हैं। अपना पाप से अपने आप मर गया। जो संख्या का द्वारा संख्या होता है, जैसे एक एक नंबर वन होता है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, एक चंद्र, बांग्ला में एक चंद्र कौन है? गौरचंद्र। दुए पक्ष शुक्ल और कृष्ण, और दूसरा क्या है? सार्थ और वैष्णव। तीन नेत्र शिवजी, चार वेद ऋग सामजु अथर्व, और पांचे बाण पंचवान कौन देते हैं? पंचवान को छोड़ते हैं नहीं, वो अपना गौड़ी सिद्धांत बोलो, वो मायावादी से उसमें क्या जाना, क्या जरूरी है? गोपीनाथ पंचवान छोड़ते हैं, तभी तो जीव आकृष्ट होकर कृष्ण भजन करते हैं ना। गोपी भाव मिल जाए इधर से, हमारा भजन देख करके गोपीनाथ पंचवान छोड़ते हैं और वो पंचोबाण के द्वारा हम धीरे धीरे आकृष्ट हो जाते हैं और आकृष्ट होकर गोपीनाथ का चरण भजन करते हैं। ये ताकि तो कामदेव का बाण मारेगा तो आप लड़की के साथ भाग जाओगे। गोपीनाथ जो पंचोबान मारते हैं वो गोपी देह प्राप्त होता है। छह ऋतु सब जानते हैं, सात समुद्र, दूध दही घी मद निमक सादा और मीठा पानी, अष्टवसु नवग्रह नवजोगेंद्र, दश दिक ओम फट सहा करना पड़ता है। ये हो गया सांख्य, इसका भक्ति सिद्धांत ठाकुर का सांख्य है, बहुत कुछ दिए उन्होंने। ये सांख्य दर्शन ये सब जानना, वास्तव में जानना क्या होता है, इतना सब जानने का आवश्यक नहीं है, फिर भी जाने का तो सिद्धांत तो दृढ़ होता है। अहंकार ना हो जाए देखना जरूरी है। सिद्धांत तो जाने चित्त ना करो अलस, जहां कृष्ण कृष्ण जागे सुदृढ़ मानस, भगवान कृष्ण ये सब जानने से कृष्ण में दृढ़ मानस होता है। कभी कभी जानने के बाद अहंकार हो जाता है, राम तो बहुत कुछ जानते हैं, हमारे जैसे कौन जानता है, हम सबको काट के ठीक कर सकते हैं, ये अहंकार नहीं होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। ज्यादा जानने की कोशिश करने कोई जरूरी नहीं है, इतना जानना जरूरी, कितना जानना जरूरी है, किरणादों की सुनी चेनो तोरोपी सही सुनना अमानी ना माने देना कीर्तन सदा हरी, फिनिश, सब शास्त्र फिनिश हो गया। ज्यादा डेंग डेंग करने कोई जरूरी नहीं है, ये तीन लाइन फॉलो करो कीर्तन सदा हरी, आपको हरिभक्ति हो गया। कृष्णदास को ब्रज गोस्वामी क्या बोलते हैं, हाथ ऊपर करके सब वैष्णव कोंठी माला कर लो ये तीन श्लोक को, और कोंठी माला करके गला में पीन लो, फिर हरिनाम शुरू कर दो, आपका उद्धार हो जाएगा। और इसको हम लोग घुमा फिरा के कितना बड़ा बना दिया, फिस्ट बना दिया, अरे छप्पन भोग बना दिया, कोई जरूरी नहीं छप्पन भोग बनाने का, सीधा है, इजी है, नो टेंशन, कोई जरूरी नहीं है। अपना आप सब कुछ शास्त्र जान जाएगा, क्योंकि महाप्रभु का आशीर्वाद है। जो महाप्रभु क्या बोला, सीधा सीधा बोला, हर्षे कहें प्रभु सुनो स्वरूप राम राय नाम संकीर्तनों को लो परम उपाय। स्वरूप दामोदर राय रामानंद दोनों से बातचीत हो रहा है, महाप्रभु हंसते हंसते कह रहे हैं, हे स्वरूप है राम राय सुनो सुनो एक मजेदार स्टोरी सुनो, क्या स्टोरी, नाम संकीर्तन कोलिकाल का परम उपाय है। तो नाम संकीर्तन कोलिकाल को उपाय जब दिया गया है, तो बाकी उपाय में हमें भागने का जरूरी क्या है। हाँ ज्यादा ज्यादा जरूरी होता है, जो व्यक्ति उस प्रकार गुणावली को संपन्न होते हैं जिसके द्वारा भगवान का सेवा होता है, जैसे सोलह गोस्म की सेवा का निर्धारण दिया, जाओ तुम ये करो ये करो ये करो, उस प्रकार, तो उस प्रकार करने के लिए कैसी स्थिति है। अगर पेड़ में पका हुआ फल रहेगा तो डांडी में लगा हुआ नहीं रहेगा, गिर जाएगा। अब कहता है चिपका के रखो, चिपकने वाला नहीं, जैसे पक जाएगा गिर जाएगा। तो जैसे आपके ऊपर भक्ति हो जाएगा ना, आप चुप रह नहीं सकते हो, आप बास्ट हो जाओगे। जब तक नहीं होगा तब तक चुपचाप रहेगा, लेकिन जिस दिन हो जाएगा उस दिन बास्ट, वो पूरा जगत को डुबा देगा। वो ये सुना में आता है ना, एक बार जब आता है तो कुछ रुकता नहीं है, उस लाइन में जो भी आता है सबको कल्याण कर देते हैं। उसी प्रकार जब भक्तों में सुनामी आ जाएगा भक्ति में, तो सबको डुबा के ले चला जाएगा। यही हर से कहन प्रभु सुनो स्वरूप राम राय नाम संकीर्तन को लो परम उपाय। यही सिद्धांत है, यही सब कुछ है, इसलिए इसका आगे कुछ भी नहीं है। हरे कृष्ण। चलो श्रीमद भागवत गंधराज की जय। मंशा कल्पतरु वशिष्ठ के पास निज परिदान भावने कृष्ण।